ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सहकारी ठगी के संबंध में संसदीय छानबीन समिति की कार्यादेश निष्कर्ष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शीर्ष नेताओं की कार्यदल की बैठक सहमति के नजदीक पहुंची है। संसदीय मामला मंत्री पदमगिरी का कथन, नेपाल के चीन के साथ जुड़े 14 नाके पुनः संचालन, उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ और चीन के तिब्बत के उपाध्यक्ष शिलाम नीमा द्वारा नाका का संचालन की घोषणा और यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए तैयार है रूसी राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन रख दी एक शर्त। अब समाचार विस्तार से। सहकारी ठगी संसदीय छानबीन समिति गठन संबंधी कार्यदल के बैठक से कार्यादेश में अंतिम निष्कर्ष निकालने की जिम्मेदारी शीर्ष नेताओं की दी गई है। आज सहकारी के रकम अपचलन के विषय को छानबीन संसदीय छानबीन समिति की कार्यादेश तय करने के लिए सिंहदरबार में हुए कार्यदल के बैठक से सहमति नजदीक पहुंची है। ये जानकारी कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पदमगिरी ने दी। कानून मंत्री गिरी ने बैठक में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ने व्यक्ति का नाम ही उल्लेख करके कार्यादेश निर्धारण करने का मांग किया है, लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सहकारी तथा रकम गए संस्था के नाम उल्लेख करने के प्रस्ताव रखा। ये जानकारी बैठक समाप्त होने के बाद संचार कर्मियों को दी गई। मंत्री गिरी ने कहा कि छानबीन के दौरान व्यक्ति की नाम आएगी ही, लेकिन अभी व्यक्ति का नाम उल्लेख नहीं करने संसदीय छानबीन समिति बनाने की बात पर सत्ता पक्ष के सदस्यों का जोर है। कानून मंत्री गिरी ने यह भी कहा कि आज ही शीर्ष नेताओं की बैठक होगी और संभवतः कार्यादेश में सहमति भी होगी। संखुआ सभा के कीमा थांका सहित चीन के जुड़े 14 नाके आज से पुनः संचालन में आया है। आज उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ और चीन के स्वशासित क्षेत्र तिब्बत के उपाध्यक्ष शिलाम नीमा ने चीन के छेंतांग में आयोजित एक समारोह के बीच कीमा थांका सहित नेपाल चीन सीमा पर रहे 14 नाके पुनः संचालन में आने की संयुक्त रूप में घोषणा की। नाका संचालन के घोषणा कार्यक्रम में चीन के छेंतांग पहुंचकर वापस लौटने के दौरान शंखुआ सभा के तुमलिंग टार विमानस्थल में संचार कर्मियों के साथ बातचीत करते हुए उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने परंपरागत नाके संचालन में आने की औपचारिक रूप में घोषणा की जानकारी दी। उप प्रधानमंत्री श्रेष्ठ ने कहा कि नेपाल सरकार की निरंतर के कूटनीतिक प्रयास के बाद कीमा थांका सहित 14 व्यापारिक नाके को खोलने में सफल हुई है। 7 नाके आज से ही संचालन में आई है और अन्य 7 नाके जल्द खुलेगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण फैलने के डर से चीनी सरकार ने 2076 माघ 5 गते से विभिन्न नाके को बंद किया था। नेकपा माओवादी केंद्र के उपाध्यक्ष अग्नि प्रसाद सापकोटा ने कहा कि संसद की गरिमा और साख गिरते जा रहा है। आज काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व सभामुख सापकोटा ने कहा कि संसद में हो रहे बहस, विचार विमर्श, शब्द चयन स्तरहीन और मर्यादाहीन है। संसद किसी भी देश के लोकतंत्र के आत्मा सुशासन के महत्वपूर्ण संवाहक होता है, फिर भी संसद में ठीक से संसदीय गतिविधि संचालन नहीं हो पाई है। कर्णाली के मुख्यमंत्री यामलाल कणेल ने कहा कि कर्णाली में रहे रेडियो नेपाल के संरचनाओं को प्रदेश सरकार को हस्तांतरण करना उपयुक्त होगा। आज सुर्खेत के वीरेन्द्रनगर में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसी नेतृत्व के टोली के साथ के भेंटघाट के दौरान मुख्यमंत्री कणेल ने कहा कि प्रादेशिक प्रसारण के लिए कार्यक्रम संचालन, उत्पादन तथा मशीनरी सामग्री में प्रदेश सरकार की छोटी छोटी रकम सहयोग करने के बजाय कर्णाली में रहे रेडियो नेपाल के संरचना ही प्रदेश सरकार को हस्तांतरण करना उपयुक्त होगा। मुख्यमंत्री कणेल ने कहा कि भौगोलिक विविधता रहे कर्णाली में अभी भी रेडियो नेपाल के महत्व कायम है, इसलिए संघीय सरकार के अधीन में रहे रेडियो नेपाल के कर्णाली में रहे संरचनाओं को प्रदेश सरकार को ही हस्तांतरण करना व्यावहारिक तथा आर्थिक हिसाब से भी उपयुक्त होगा। भेंट में कार्यकारी निर्देशक केसी ने कहा कि दैनिक 4 घंटे प्रादेशिक प्रसारण करते आ रही सुर्खेत प्रसारण केंद्र के लिए आगामी आर्थिक वर्ष से संचालन होने के हिसाब से कार्यक्रम उत्पादन प्रस्ताव सहित प्रसारण सुदृढ़ीकरण के परियोजना के बारे में विचार विमर्श हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि करनाली में रेडियो नेपाल के एक प्रादेशिक प्रसारण केंद्र के साथ ही 8 एफएम रिले स्टेशन मार्फत रेडियो प्रसारण सेवा प्रदान करते आ रही है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। आज ही कार्यकारी निर्देशक केसी सहित के एक टोली ने रेडियो नेपाल प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र सुर्खेत के स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन किया है। मौके पर कार्यकारी निर्देशक केसी ने प्रादेशिक प्रसारण केन्द्र सुर्खेत द्वारा होने वाले कार्यों, प्रसारण क्षमता बुद्धि के साथ साथ व्यापार बढ़ाने के बारे में कर्मचारियों के साथ अंतर्क्रिया किया। कार्यकारी निर्देशक केसी ने कार्य संपादन के दौरान प्रादेशिक प्रसारण केंद्र सुर्खेत के कर्मचारियों का समस्या और उसके निदान के बारे में कहा कि फिर हम लोग रेडियो नेपाल के बोर्ड के बैठक से स्वीकृत कराने के बाद शकभर प्रयास करेंगे। काठमांडू महानगरपालिका ने इसी जेठ 14 गते के भीतर काठमांडू घाटी में संचालित सभी सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयों को सूचना अधिकारी तय करने का निर्देश किया है। महानगरपालिका के संचार तथा सूचना आयन 2080 बमोजिम कामपा ने इसी जेठ 14 गते के भीतर सूचना अधिकारी तय करने के लिए महानगर को जानकारी कराने का निर्देश भी किया। महानगरपालिका के शिक्षा विभाग प्रमुख गोविंद प्रसाद शर्मा के मुताबिक कामपा ने इससे पहले भी शैक्षिक संघ संस्थाओं को सूचना अधिकारी तय करके विभाग में भेजने का आग्रह किया था, लेकिन कामपा के आग्रह के अनुसार कुछ विद्यालय ही सूचना अधिकारी तय करने का जानकारी मिला है, इसलिए पुनः निर्देश दी गई है। सूचना अधिकारी में संस्था की दूसरे जिम्मेदारी पर रहे व्यक्ति को होना होगा। बता दें कि अभी महानगर पालिका में 87 सामुदायिक विद्यालयों संचालन में है, तो वहीं 600 संस्थागत विद्यालय हैं। गंडकी प्रदेश के 11 जिलों में 1,10,029 बच्चों को पोलियो के विरुद्ध के वैक्सीन IPV टीका दी जाएगी। राष्ट्रीय टीके का कार्यक्रम अंतर्गत अभियान के रूप में इसी जेठ 13 गते से 26 गते तक गंडकी में टीके का अभियान संचालन होने जा रहा है। ये जानकारी प्रदेश सरकार के सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से जंग चल रही है, लेकिन अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को विराम देने के लिए तैयार है। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि व्लादिमीर पुतिन अब युद्ध रोकने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए उनकी कुछ शर्तें हैं। यदि मौजूदा युद्ध क्षेत्र को सीमाओं के रूप में मान्यता दी जाती है तब वो युद्ध रोक देंगे। वो चाहते हैं कि दोनों देशों की सीमा अब मौजूदा हिसाब से ही रहे, यानी रूस ने यूक्रेन के जिन हिस्सा पर कब्जा कर लिया है अब वह उसके पास ही रहे। रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक अगर यूक्रेन और पश्चिम देश कोई जवाब नहीं देते हैं तो वो युद्ध रोक सकते हैं। इन सूत्रों के अनुसार पुतिन ने इस बात पर निराशा जताई है कि व्लादिमीर जेलेंस्की से बातचीत पर रोक लगाने के पीछे पश्चिमी देशों का हाथ था। रॉयटर्स के सूत्रों के दावों पर प्रतिक्रिया करने के लिए पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि राष्ट्रपति ने बार बार स्पष्ट किया है कि रूस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है और आगे कोई युद्ध नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ से अभी भी युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है। रूसी सेना की तरफ से हासिल किए गए यूक्रेनी इलाकों को वो फिर से छीनना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक हाल के हफ्तों में रूस ने यूक्रेन में कब्जा कर लिया है। बता दें कि पिछले हफ्ते इसने अर्थशास्त्री आंद्रेई बेलोनसोव को रक्षा मंत्री नियुक्त किया। पश्चिमी ने इसे इसके बाद इस नजरिए से देखा कि युद्ध जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि फिलहाल यूक्रेन स्विट्जरलैंड में बातचीत की तैयारी कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य लड़ाई को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राय को एकजुट करना है, लेकिन इस बातचीत में पुतिन को नहीं बुलाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सहकारी ठगी के संबंध में संसदीय छानबीन समिति की कार्यादेश निष्कर्ष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शीर्ष नेताओं की कार्यदल की बैठक सहमति के नजदीक पहुंची है। संसदीय मामला मंत्री पदम गिरी का कथन, नेपाल के चीन के साथ जुड़े 14 नाके पुनः संचालन, उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ और चीन के तिब्बत के उपाध्यक्ष शिलाम निमा द्वारा नाका पुनः संचालन की घोषणा और यूक्रेन के साथ युद्ध रोकने के लिए तैयार है रूसी राष्ट्रपति पुतिन, लेकिन रख दी एक शर्त। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।